کرنے ہی نہیں دیتی ہے. بےد کا باپ کہتے ہیں مجھے یاد کرنے سے ہی تم کو وکرم تمہارے دن وکرم وناش ہوں گے. دل میں خوشی رہنی چاہیے, سمجھانے کیسے پتا چلے کہ ہم جو سمجھاتے ہیں سروس کرتے ہیں وہ ٹھیک سروس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. ہاں جس سروس سے خوشی بڑھے تو سمجھ لینا چاہیے ہم نے سروس ٹھیک کی, اور سروس کی اور خوشی نہیں بڑھی تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ ہم نے سروس اچھی نہیں کی ہے. یوگ نہیں ہے تو محنت بھی نہیں رہتے. ابھی تک بہتوں کی محنت جانوروں سے بھی بدتر ہیں. ابھی تک ابھی مانا جس سمے یہ وانی چل رہی تھی اس سمے کی بات بتائی کہ ابھی تک بہتوں کے محنت تھوڑوں کے نہیں بہتوں کے محنت جانوروں سے بھی بدتر ہیں. جیسے کہ جان بالکل ہے ہی نہیں تو وہ کیا سمجھا سکیں گے. نئے نئے آتے ہیں ان کو تھوڑا بھی سمجھاؤ تو جھٹ سمجھ جائیں گے, تمہارے سامنے آ جائیں گے جھٹ سمجھ جائیں گے. کہیں گے یہ تو بڑی چیز ہے, فلانی نے تو ہم کو سمجھایا ہی نہیں. اس لیے کہتے ہیں ہم کو انوبھوی ہوشیار ٹیچر چاہیے. کوئی کو تو 20 برس سے بھی کوئی انوبھو نہیں ہوتا ہے. کیا 20 برس چلتے چلتے جان میں ہو گیا اور انوبھو ہوتا ہی نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ہم کو انوبھوی ٹیچر چاہیے. کوئی ایک سپتاہ ہی انوبھو کرا دیتے ہیں, ایک سپتاہ میں انوبھو نئی نئی پوائنٹس ملتی رہتی ہے نا تو دل کو لگ جاتی ہے. پرانوں کو دھارنا ہوتی ہی نہیں ہے. یاد کی یاترا میں نہ ہونے کے کارن سوبھاؤ بھی ان کا نہیں بدلتا. اور بھی کئیوں کا سوبھاؤ بگڑتا جاتا ہے. تیسرا پہلے تو ایسا باپ جس کو آدھا کلپ یاد کیا ہے وہ ملا ہے تو ان کو یاد کتنا کرنا چاہیے. سمجھتے تو ہیں نا اونچتے اونچ بھگوان ہے. کیسا بھگوان ہے اونچتے اونچ بھگوان, کمپیریزن کس سے کیا ہے؟ اونچتے اونچ ہے تو کمپیریزن کیا نا, کس سے کمپیریزن کیا؟ آتماؤں سے کمپیریزن کیا. آتمائیں تو دیو آتمائیں بھی ہوتی ہیں, منشیا آتمائیں بھی ہوتی ہیں اور پرماتما بھی ہوتا ہے. کمپیریزن کس سے کیا؟ وہ بھگوان ہوتے ہیں جیسے رام کو بھگوان کہہ دیتے ہیں, کرشن کو بھگوان کہہ دیتے ہیں, شنکر کو بھگوان کہہ دیتے ہیں, لیکن ان سب میں اونچے سے اونچے بھگوان کون ہے؟ شیو باپ. اونچے سے اونچ ہے سپریم سول. تو سمجھتے تو ہیں نا اونچے سے اونچے بھگوان ہے. دنیا میں تو کسی کو بھی پتا ہی نہیں ہے کہ اونچے سے اونچے بھگوان کون ہے. وہ سمجھتے ہیں کرشن نے گیتا سنائی. کرشن کو بھگوان تو کہتے ہیں لیکن کیا اونچے سے اونچے بھگوان ہے؟ نہیں. گیتا کس نے سنائی؟ گیتا سنائی اسی اونچے سے اونچے بھگوان نے جس سے اونچا کوئی ہوتا نہیں. اونچ اور نیچے ہوتے کہاں ہیں؟ پرم دھام میں ہوتے ہیں, سوکھم وطن میں ہوتے ہیں یا ساکار وطن کی بات ہے؟ ضرور ساکار وطن میں ہی. جو بھگوان کے ٹائٹل دھاری ہیں उनके बीच में कोई ऐसा पार्ट बजाने वाला है परम पार्टधारी जो ऊंच से ऊंच भगवान का पार्ट बजाता है, गीता का ज्ञान देने वाला है। अभी तुम बच्चे तो समझते हो, जिसको मनुष्य भगवान कहते हैं वो भी लाश के स्टेज पर है। यस, मनुष्य जिसको भगवान कहते हैं वो भी लाश के स्टेज पर है। उसे ऊंच से ऊंच नहीं कहेंगे, माने कौन है लाश के स्टेज पर है? सीढ़ी के क्षेत्र में लाश के स्टेज पर कौन दिखाया है? कृष्ण की सोल को दिखाया है या राम की सोल को दिखाया है? कृष्ण की सोल ब्रह्मा को फिर भी खड़ा हुआ दिखाया है, और सातों की सैया पर किसको दिखाया है? राम वाली सोल को दिखाया है सातों की सैया पर, भीख मांग रहा है। तो वो तो नीचे से नीचे स्टेज हो गई, तो लास्ट स्टेज पर है। यदि फर्स्ट स्टेज पर जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं ड्रामा प्लान अनुसार, अभी तुम भी समझते हो हम आस्ते आस्ते उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं, फिर हम श्रीमत पर सतो प्रधान स्टेज पर जा रहे हैं। बाप हमको याद दिला करके अभूल बनाते हैं, बाप याद करके अभूल देवी देवता बनाते हैं। क्या अभूल बनाने वाला? सिर्फ एक बाप, और भुलाने वाले देवताएं सब भूल पाप आदि नहीं करते हैं, कोई व्यर्थ अक्षर नहीं बोलते हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में सभी है व्यर्थ, ऐसी बातों को नहीं सुनो न बोलो। बहुत बच्चे हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, व्यर्थ बोलते रहते हैं। बाप कहते हैं कभी व्यर्थ न बोलो। इस बात की सख्त मना है, अगर व्यर्थ कोई बोले भी तो तुम रिस्पॉन्ड न दो। क्या उनको कोई जवाब न दो, चले जाओ। बात की शिक्षा पर चलो तो झगड़ा नहीं होगा, हियर नो इविल, टैप नो इविल, ही नो इविल, और अभी सोचो नो इविल। क्या अभी ऐसी स्टेज चल रही है तो काफी ब्राह्मण बच्चों की कि सोचना भी नहीं है, ये गलत बात नहीं सोचना, उसका भी वाइब्रेशन बन जाएगा, उसका भी असर दूसरों के ऊपर पड़ेगा, पाप हमारे ऊपर कर जाएगा। तो इन बातों का आपकी दुनिया तो कोई भी नहीं जानती। महाराष्ट्र बच्चे समझ सकते हैं जैसा बोलना ही विल है, एक ने अगर बोला तो दूसरा काम बंद कर ले, इससे भी बेहतर है किनारा कर देना। क्या कोई ईविल बोले तो कान बंद कर लेना चाहिए। अच्छा, कान तो बंद कर लेंगे, आंखें तो खुली रहेंगी, आंखें खुली रहेंगी तो भी वाइब्रेशन तो आ सकता है, तो क्या करना चाहिए? किनारा कर देना सबसे अच्छा है। इसमें भूत आता है तो अच्छा नहीं लगता है, किनारा करना अच्छा है, नहीं तो तुम्हारे में भी भूत आ जाएगा। न सुनने से दिल को रंज नहीं होगा। क्या रंज होता है? तब है, जब रंज होता है तो फिर कचहरी की जाती है। यहाँ तो श्रीखंड होकर के रहना चाहिए, नून पानी होने की दरकार नहीं, तुम चुप रहो। एक मिसाल भी देते हैं, दो बहू लड़ती थी तो उसने कहा मुख में नुलहरा डाल दो तो बोल नहीं सकेगी। तो बहुत ऐसे भूत होते हैं जाते करते हैं, फिर उनको पानी पिलाते हैं। बाप तो रोज समझाते रहते हैं, एक दो को भाई भाई समझो। दुश्मनी नहीं होगा तो फिर किससे पूछेंगे? तुम आत्मा भाई भाई हो, भाई भाई की दृष्टि से देखोगे तो चुप हो जाओगे। चुप रहने का ही मार्ग मिलता है। बाप को याद करो, मुख से कुछ मत बोलो। बाप को याद करना है और पढ़ाई में चुप रहना है। बात करने की दरकार नहीं है, ये तो समझाना होता है कि ऐसे करने से तुम याद कर सकते हो। कैसे करने से? जितना चुप रहेंगे उतना हम याद कर सकेंगे। और कहीं ईविल बातें बोली जाती हैं और हम उनका जवाब देने लग पड़े तो क्या होगा? हमारी याद में खलल पड़ जाएगा। तो चुप रहने की नॉलेज है, इस पढ़ाई में चुप रहना है। कोई बात करने की दरकार नहीं, तो समझाना होता है तो ऐसे ऐसे करने से याद कर सकते हो, पढ़ाई भी पढ़ सकते हो। सुदर्शन चक्रधारी बन बाप की याद में रहते रहो, बाप शक्ति के आदि मध्यंत का ज्ञान भी सुनाते और फिर शांति का सागर भी। तुम उनके बच्चे हो, इनके नहीं, इनके नहीं है, ब्रह्मा की तरफ इशारा यहां से निकलता है कि तुम इनके बच्चे नहीं हो। बच्चे किसके हो? उनके, जो अभी वास्तव में भविष्य में पार्ट बजने वाला है। कौन सा पार्ट बजने वाला है? शांति देवा। तो तुम उस शांति देवा बाप के बच्चे हो, तुम भी शांति के सागर बन जाएंगे। तुम भी जब वापस आएंगे तो तुमको ऐसे ही कहेंगे, शांति का सागर, सुख का सागर। फिर तुम यहाँ आते हो तो पार्ट बदल जाता है, फिर है प्रारब्ध। तो ये सारी बातें ड्रामा में नूद हैं। बाप कल्प कल्प तुमको समझाते हैं। बाप का कितना वंडरफुल नॉलेज है, ये नॉलेज और कोई दे नहीं सकता। इनको कहा जाता है रूहानी बाप की नॉलेज। क्या इस नॉलेज को कोई नकल करके देना चाहे तो वो दे नहीं सकता। कितनी प्यार से बैठ पूजा करते हैं, किसी ज्ञान के सागर बाप की। जरूर उन्होंने कुछ किया होगा, ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के मालिक होकर के गए हैं। ये पवित्र थे इसलिए अपवित्र मनुष्य होने के आगे माथा टेकते हैं। पवित्र के आगे अपवित्र माथा क्यों टेकते हैं? कारण क्या बताया है? क्यों जी? पूजा हमेशा पवित्रता की होती है। जहाँ जहाँ भी पूजा की यादगार है तो साबित होता है कि उन्होंने पवित्रता धारण की है। कन्या भी पवित्र है तो सभी उनको माथा टेकते हैं। सभी मना, जो पवित्र रहने वाले साधु सन्यासी हैं वो भी कन्या को माथा टेकते हैं। तो जब आप पवित्र बनती है तो सभी के आगे माथा टेकना पड़ता है।
किसको?
कन्या को।
सन्यासी बल पवित्र रहते हैं परंतु सदा पवित्र तो रह नहीं सकते।
जन्म तो विकार से ही लेते हैं, ये है ही पति तुल्य। केवल पवित्र तो कोई हो ही नहीं सकता। कहाँ इस पतित दुनिया में एवर प्योर कोई हो नहीं सकता। रावण राज्य के बाद ही ये पतित होते हैं। उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वाइटलेस वर्ल्ड, और ये है विशियस वर्ल्ड। मनुष्यों की बुद्धि में ये आता नहीं है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म वाइटलेस था। फिर कहेंगे सभी वाइसलेस। फिर होते हैं पहली विशियस। अभी तो
कलहें ही कम होती जाती और साथ करके जाना चाहिए। फुल वॉइसलेस वर्ल्ड में क्या सेमी वॉइसलेस वर्ल्ड पेटा में नहीं जाने का पुरुषार्थ करना है? क्या पुरुषार्थ करना है? जो फुल वॉइसलेस वर्ल्ड है वो कब है? सत्युग के आज में या सत्युग के अंत में? वो एकदम सत्युग के आज में है। फुल वॉइसलेस वर्ल्ड मैं तुमको पढ़ाता हूँ स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। पीछे तो सैनिक चलने चाहिए, पूजा भी पहले अब विचारी होती है, पीछे भी विचारी होती है। तो ये बातें बात ही बैठ समझाती थी क्या? जो क्रम पूजा कर रहा है वही क्रम ज्ञान लेने वाले ज्ञानियों का भी रहेगा क्या? जिन्होंने अभिविचारी पूजा जितनी ज्यादा की है वो उतना ही ज्यादा अभिविचारी ज्ञान उठा देंगे। एक बात, दूसरा न कोई, दूसरे की बातों पर ध्यान नहीं देंगे। किसकी बात पर ध्यान देंगे? एक बात की बातों पर ध्यान देंगे। और जिन्होंने जितनी जास्ती दुविचारी पूजा की है रिजल्ट संगम युग में क्या होगा कि वो आत्माएं उतना ही दुविचारी ज्ञान उठा देंगे, अपनी मनमत भी चला देंगे, मनुष्य गुरुओं की मनमत पर भी चलेंगी। तो मैं तुमको पढ़ाता हूँ स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं, समझाते समझाते कहते हैं कि नीचे बच्चों याद की यात्रा को नहीं भूलना, ये याद की यात्रा ही वॉइसलेस बना देगी जो फिर तुम वॉइसलेस वर्ल्ड में जा सकोगे। जो बहुत अच्छा पढ़ेंगे वो ही फुल वॉइसलेस वर्ल्ड में आ देंगे। वॉइसलेस वर्ल्ड में आने का क्या शर्त बताई? पढ़ाई। जो फुल वॉइसलेस वर्ल्ड में जाना चाहते हो उनको पढ़ाई भी फुल पढ़नी चाहिए। जो फेल होते हैं उनकी ये निशानी है क्या? फेल होने वालों की निशानी क्या बताई है? तीर कमान। कौन फेल हुआ? रामचंद्र फेल हुआ, तो उनको तीर कमान दे दी है। कब फेल हुआ? जरूरी है कि आज में फेल हुआ तो फेल होने वालों को तीर कमान मिल जाती है कि बाण चलाओ और पुरुषार्थ रूपी धनुष उठाओ, फिर से करो प्रयत्न। अगर अच्छा पुरुषार्थ करोगे तो जो फाइनल पेपर है उसमें पास भी हो सकते हो। तो बाप समझाते हैं बच्चे, अब निरंतर बाप को याद करो क्या? बीच बीच में टूटी टूटी याद, बाप की भी याद की, बीच में दूसरे की भी याद आई, तो याद निरंतर कही गई कही जाए या टूटी हुई कही जाए? खंडित याद हुई या अखंड याद हुई? याद तो खंडित हो गई। चौथा तो बाप बहुत सहज करके समझाते हैं, खंडित याद से तुम्हारे पाप कर्म विषम भस्म नहीं होंगे। कौन सी याद से होंगे? जो निरंतर याद होगी उसी से भस्म होंगे। और बहुत प्यार से समझाते हैं, साधारण तरीके से नहीं। इस समय है भक्ति का राज्य, जिसको रावण राज्य कहा जाता है। भले बाप आया हुआ है लेकिन राज्य किसका है? रावण का राज्य आया हुआ है, रावण का राज्य है। और ये सारे विश्व में है, सत्युग में ये वेद शास्त्र आदि नहीं होते, ये सभी चीज से निकलते हैं। भक्ति मार्ग में कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी के शालिग्राम बना करके पूजा करते हैं। कहां की यादगार है? यादगार कहां की है? क्या है संगम किया दिवस? संगम युग में भी ये रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है। ये शरीर मिट्टी के हैं, मिट्टी के शरीरों में आत्मा को याद करने का हम पुरुषार्थ करते हैं, जिनकी निरंतर याद होती है, निरंतर जिनका दीपक जलता है, वो जैसे शालिग्राम बन गए। जो शालिग्राम इस तरह बनते हैं, निसंकल्प की स्टेज धारण करते हैं, उनकी फिर पूजा होना शुरू होती है। क्या? कौन पूजा करते हैं? पवित्र करते हैं या अपवित्र करते हैं? जो अपवित्र होते हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो अपवित्र होते हैं, जो पवित्र बन जाते हैं उनकी पूजा करते हैं। कब तक पूजा करते हैं? ना, जब तक सतो प्रधान सतो सामान्य स्टेज में रहेंगे तब तक उनकी पूजा करेंगे। फिर चार अवस्थाओं से पसार तो सभी को होना है, शूटिंग चल रही है ना, हर युग में चार अवस्थाओं की शूटिंग चलती है। तो जब समो प्रदान हो जाते हैं तो उन सारे ग्रामों को क्या करते हैं? विश्राय कर देते हैं। आज में उनकी पूजा करेंगे और अंत की शूटिंग में उनको मानने से इनकार कर देंगे। उत्पत्ति पालना कर फिर विनाश कर देते हैं, तो वो तो सब है हद की बातें। यहाँ है सारी बेहद की बात। कितनी मेहनत होती है वास्तव में तुमको तो कोई मेहनत नहीं। भक्ति मार्ग में मेहनत बहुत करते हैं, यहाँ मेहनत क्यों नहीं? यहाँ सहज राजयोग कब है? अगर हम श्रीमत पर चलते रहे तो सहज सहज होगा, और श्रीमत की वर्चिलासी करते हैं तो यहाँ भी कठिन हो जाए, यहाँ भी भक्ति मार्ग हो जाता है। तो तुम बच्चों को सिर्फ अल्फ और बे को समझना है, बाप को याद करना है, वो ही पति का पावन है। समझना किसको है? है? ये नहीं कहा बिंदु को समझना है। किसको समझना है? अल्फ और बे को समझना है। एक बिंदु ज्योति बिंदु शिव, और वो किस में प्रवेश करता है? अलख में प्रवेश करता है। जिस अलख में प्रवेश करता है वो हुआ रचयिता, और फिर जो रचना रची जाती है पहली वो हुआ बे। तो शिव राम बाप और कृष्ण बच्चा, तीन की संधानी है। बाप को याद करना है, वही पतित पावन है। इन तीनों में पतित पावन कौन? शिव ज्योति बिंदु, राम बाप, कृष्ण बच्चा, तीनों में पतित पावन कौन? एक शिव बाप, वही पतितों को पावन बनाने वाला है और पावन बनना भी है। तो बस और क्या चाहिए? परंतु ये भी माया भुलाई देती है कि हमको पति से पावन बनना है, ना लेते बहुत है। कोई चाहे तो अकेला भी कर सकता है। क्या ये पढ़ाई इतनी सहज है, कोई चाहे तो अकेला भी पढ़ सकता है। ऐसे बहुत हैं जो गुप्त पुरुषार्थ करते ही रहते हैं, तो संगठन में नहीं है। जैसे आसमान में सितारा अकेला चमकता है, ऐसे बहुत हैं जो अकेला पुरुषार्थ करते रहते हैं। किसी आधार की उनको दरकार, संगठन के आधार की भी दरकार नहीं। फिर वो जाकर के उच्च पद पावन पाए लेंगे। तुम्हारे शास्त्र में भी भील और अर्जुन का मिसाल है। अर्जुन ने संगठन में रह करके पुरुषार्थ किया, और भील ने अकेले पुरुषार्थ किया। आगे कौन चला गया? भील आगे चला गया। भील तो सभी है ना,
लो अभी भील तो सभी है ना, तुम्हारे सिवाय सभी भील।
क्या
तुम्हारे सिवाय सभी भील? तुम तो संगठन में बैठे हो इसलिए भील नहीं है, और बाकी तुम्हारी सिवाय सब सब भील है। भील कहो बंदर कहो जो चाहे तो, हो सकता है कोई ऐसा तेज बुद्धिमान भी हो जो सुनने से ही झट समझ जाए। बाप को याद करना है, देवी देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करना है, बस याद करते करते शरीर छोड़ देना।
क्या
जैसे ब्रह्मा बाबा ने सही छोड़ दिया ऐसे हैं? हाँ बीते भी शरीर छोड़ देना। हाँ शरीर छोड़ना माना मरना, मरना कैसा? मरना तो कोई नहीं चाहता, बाबा हमें वो शरीर से मरना नहीं सिखाते। कौन सा मरना सिखाते? जीते भी मर जाओ माना देहबान से मर जाओ। तो याद करते करते शरीर छोड़ना सार के यहाँ क्या हुआ कि देहबान को छोड़ देना, ये तो कोई भी कर सकते हैं। ऐसे भी निकल पड़ेंगे जो याद करते करते देहबान को छोड़ देंगे। तुमको पता भी नहीं पड़ेगा कि इन्होंने देहबान छोड़ दिया है। ऐसे आकर के अपना वर्पा लेंगे, हो सकता है अगर इस अवस्था में याद करते रहे तो ऐसा भी हो सकता है। जंगल में भी जाकर के रहे तो भी उनको ताकत मिलती रहेगी, अजनी संगठन में रहे तभी ताकत मिल सकती है। तो उनको सब कोई खाना आगे न पहुंचाए ये भी नहीं हो सकता। इनको जो जंगल में चले जा रहे हैं और अकेले पुरुषार्थ करें भील मुआफी के, उनको भी खाना वाजी मिलता रहेगा क्योंकि ताकत उनमें बहुत रहती है, और भी उनके पास जाते रहेंगे जो भी जाएंगे, और जो भी उनके पास आएंगे उनको वो अलिफ और बे सुनाते रहेंगे, कायदा ज्ञान सुनाते रहेंगे। अलिफ माने अल्लाह, बे माने बादशाह, अलिफ माने क्रिएटर, बे माने क्रिएटर। तो क्रिएटर और क्रिएशन का ज्ञान सुनाते रहेंगे माना राम, बाप और कृष्ण बच्चों का ज्ञान सुनाते रहेंगे। तो बच्चों को एक तो बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। जब तुम्हारे में जौहर भर जाएगा इस बात का, याद का प्रैक्टिस करते करते याद की याद के लिए आत्मा प्रैक्टाइज हो जाएगी, मन याद का जौहर जब भर जाएगा वाणी में, फिर भार जल्दी जल्दी वृद्धि को पाता रहेगा और तुम्हारा नामाचार बहुत होगा। बाप के आगे तो कभी तो सिर्फ बिताना है, कभी तो नहीं। जो भी पांच करोड़ मनुष्य आत्मा है चाहे नास्तिक धर्म की ही क्यों हो, लेकिन अंत में उनको बाप के आगे आकर के झुकना जरूर पड़े। समझेंगे ये ज्ञान की बाढ़ तो उस बात में ही भरी है, ये कोई साधारण गुरु नहीं है, ये तो बात ही बाढ़ भरती है। ऐसे बात को बहुत खुशी से हर्षित मुख में होकर के याद करना है। तुम्हारा हर्षित मुख फिर अविनाशी बन जाता है। जितने जितने योग में रहेंगे तो दोनों से बचते रहेंगे, जितना याद नहीं होंगे उतना ही दैवी निर्विधान होगी। वो लोग कितने हथियो का भी करते हैं जानते तो कुछ भी नहीं।
क्या सभी का मुझे नहीं खास कर, मैं सर्वेंट सभी का हूँ। कौन सा बात कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट बाप कहते हैं या मनुष्य आत्माओं का पिता कहते हैं? कौन कहते हैं? या धर्म पिताएं कहते हैं कि मैं सभी का सर्वेंट हूँ? कौन कहते हैं? रूहानी बाप, जो रूहानी है सदैव, सभी भी जितना भी नहीं बनता है वो सुप्रीम कोर्ट बाप कहते हैं मैं तो सभी का सर्वेंट हूँ। इसमें अहंकार की बात नहीं है, ज्ञान की यात्रा से ही बच्चों में ताकत आएगी। जब अपने भाई भाई समझ करके एक दो को देखेंगे तो हो सकता है कि उनको साक्षात्कार भी हो जाए। क्या जब ये प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी कि हम किसी से भी बात कराएं तो उसको भ्रकृति के मध्य में क्या नहीं समझ आए, जो कि बिल्कुल सिपाही देखने को क्या प्राप्त हो जाए। तो हमारी प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी तो उनको हो सकते हैं। वो तो बचपन का ही है, सभी को नहीं करते हैं, उसको भय करते हैं। तो बचपन का साक्षात्कार होता है, अगर की अलग से साक्षात्कार नहीं होता तो मेरा तो
बात
समझ सकते हैं कि कौन सी आत्माएं किस धर्म का पाठ बजा रही है। बिंदु की याद वो जड़वत है, बिंदु और जड़ को याद करने से क्या होता है, जैसे साइंस जान है वो अनुबंध तैयार कर लिया, तो जो अनुबंध तैयार उनकी बुद्धि तो जरूर सूक्ष्म बनी है ना, बुद्धि तो सूक्ष्म बनी है लेकिन वो दिलवाने बाप के बच्चे नहीं है। कैसे बच्चे? दिमाग उन्होंने बहुत सूक्ष्म कर रखा है, इतना सूक्ष्म दिमाग कर रखा है कि जो रचना रचते हैं उससे फायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, विश्व का कल्याण कितना होगा, हमारा कल्याण कितना होगा, ये उनको पता ही नहीं रहता। बस चमत्कार ही चमत्कार के पीछे लगे रहेंगे। तो बिंदी को याद करना वो है जड़ को याद करना, बुद्धि जड़वत बन जाती है लेकिन साकार के साथ बिंदी को याद करेंगे, सुप्रीम सेल को याद करेंगे तो हमारी प्रवृत्ति की याद हो जाती है। प्रवृत्ति की याद और निवृत्ति की याद उसे बहुत अंतर कर जाता है। प्रवृत्ति में ही कल्याण है, निवृत्ति में कोई कल्याण नहीं।
वही तो चौरासी धर्म चौरासी मौसम निकलते हैं, उनका कोई मुरली में आधार ही न हो, मुरली के आधार के बगैर नहीं बातें निकल पाएंगी। वो रंग कितनी भी निकलेंगे तो भी मुरली के आधार के आधार निकल के निकलेंगे। वो चित्र सही माने जाएंगे जिनका आधार मुरली नहीं है, वो चित्र भी रंग। सुनते हैं कि उसको बाबा की वाणी से कैदी जरूर करना चाहिए। बात कैदी होती है तो मानना है, कैदी नहीं होती है तो नहीं मानना।
की वाणी अंत पता चला जाता है। जो डायरेक्ट सुनाया जाएगा उसमें सुनाने वाले के वाइब्रेशन मौजूद होते हैं, व्यक्ति का फोर्स मौजूद होता है, जो असली अर्थ है वही सामने आता है। और सबसे वाइब्रेशन भी नहीं होगा, सुनाने वाले की व्यक्ति का फोर्स भी नहीं होगा, और जो असली अर्थ है वो जीव का क्यों नहीं आ सकता। और जो सत्यात्मान है छपा के रखा हुआ या पत्तों पर लिख करके रखा गया, उसमें लिखने वाले की वाइब्रेशन समा जाएगी, वो चल जाएगी, व्यक्ति का फोर्स नहीं होगा, लिखने वाले की व्यक्ति का फोर्स समा जाएगा, वाइब्रेशन भी बदल जाएंगे और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी और भूलें भी उसमें जाति बढ़ जाएंगी। कुछ लिखने वाला भूले करेगा, छोड़ देगा, कुछ ऐड कर देगा नया, और कुछ पढ़ने वाला भूले करेगा तो बहुत मिस्ट हो जाता है। इसलिए उसको कहा जाता है थर्ड क्लास मार्क। मनुष्य सबसे जाए और वो अपना काम संपन्न करने
ये याद आ गई है ना, देखिए इस्लाम धर्म है तो इस्लाम धर्म की सोल परम धाम से आती है, मूल सोल सूक्ष्म सोल इब्राहिम, वो जिसमें प्रवेश करती है वो है आधारभूत, और उस आधारभूत को भी जो जन्म देने वाला है वो है कुंडली। तो ऐसे यहाँ विष्णुभूत है, आज सनातन देवी देवता धर्म में भी मूल रूप में ये तीन रूप है, त्रिमूर्ति के बगैर कुछ नहीं होना। त्रिमूर्ति जरूर चाहिए, इसलिए बोला बात जब आते हैं तो तीनों मूर्तियां होती हैं, आज में भी तीनों मूर्तियां थी लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुई ब्राह्मण के बीच में, और अंत में वो तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हो जाती है, एक दम नहीं प्रत्यक्ष होती, धीरे 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 प्रत्यक्ष होती जाती है, जिनको कहते हैं त्रिमूर्ति झंडा, तीन कपड़ों का झंडा, तीन शरीर की वक्त, जिनको संसार में हमें बुलंद करना है, नाम बाला करना है, शंकर द्वारा विनाश, और जब विनाश हो जाता है कचरे का तो जो शेष रहेंगे उनकी पानी ब्रह्मा के विष्णु द्वारा,
तो जो सार को उठाने वाली आत्मा है उनकी बुद्धि में आ जाएगा, तो जब एक ही बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है तो एक को याद करने में सारे वृक्ष का कल्याण हो जाएगा, तो एक एक पत्ते को पानी देने का क्या जरूरत, एक एक पत्ते को अलग बैठे अलग अलग बैठ करके पानी दें इस वजह का जल दें इसकी जरूरत नहीं रह जाती, एक बीज में ही सब कुछ समाया हुआ है, जब एक में ही है ठीक है, जो कमजोर आदमी है वो कमजोर आधार पकड़ लेती है,